नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौर। 18 जून 2021 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए यूएन महासचिव के दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटेरेश की फिर से नियुक्ति, वैश्विक महामारी से दुनिया को उबारने में सहायता सर्वोपरि प्राथमिकता, कोविड-19 के 1.5 साल बाद भी नहीं हो रहा स्वास्थ्य उपायों का असरदार ढंग से इस्तेमाल, टीकाकरण की धीमी रफ्तार वायरस के लिए रूप बदलने और लोगों की जान जोखिम में डालने का मौका, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए संधि का 14वां सत्र होगी एक विशेष बातचीत, महामारी के दौर में दुनिया भर में घरेलू कर्मचारियों पर गहरा असर, आजीविकाओं पर गहराया संकट। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश को दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। उनका पहला कार्यकाल इस वर्ष के अंत में समाप्त हो रहा है। यूएन प्रमुख ने शुक्रवार को जनरल असेंबली में पद की शपथ ग्रहण करने के बाद सदस्य देशों को संबोधित किया और कहा कि इतिहास के इस बेहद अहम लम्हे में सौंपी गई इस विशाल जिम्मेदारी का उन्हें एहसास है।
We are truly at a crossroads with the consequential choices before us. Paradigms are shifting, old orthodoxies are being flipped, and we are writing our own history with the choices we make right now.
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि हम वास्तव में दो राहे पर खड़े हैं, महत्वपूर्ण फैसले हमारे सामने हैं, परिपाटियां बदल रही हैं, अतीत की रूढ़िवादिताओं को पलटा जा रहा है। यूएन प्रमुख ने दूसरे कार्यकाल में कोविड-19 महामारी से उबरने में दुनिया की मदद करने को अपनी प्राथमिकता बताया है। यूएन के शीर्षतम पद के लिए 193 सदस्य देशों से एंटोनियो गुटेरेश एकमात्र उम्मीदवार थे। उनके पहले 5 वर्षीय कार्यकाल की शुरुआत जनवरी 2017 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के 18 महीने बीत जाने के बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों का असरदार ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इससे वायरस को फिर से अपना रूप बदलने, फैलने और लोगों की जान लेने का मौका मिल रहा है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी प्रमुख ने शुक्रवार को जिनीवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, अफ्रीका की कुल आबादी का महज 1% का ही टीकाकरण हुआ है और वहां संक्रमण की संख्या तेजी से बढ़ रही है। महानिदेशक गेब्रेयेसस ने कहा,
Vaccines donated next year will be far too late for those who are dying today or being infected today or at risk today.
इन हालात में अगले वर्ष दान की जाने वाली वैक्सीन के उन लोगों तक पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी जिनकी मौत आज हो रही है, जो आज संक्रमित हो रहे हैं और जिन्हें आज संक्रमण का जोखिम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य इस वर्ष सितंबर तक हर देश की लगभग 10% आबादी, वर्ष के अंत तक 40% और अगले साल के मध्य तक 70% आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य है। संगठन के मुताबिक वैश्विक महामारी का अंत करने के लिए इन अहम पड़ावों पर पहुंचना जरूरी होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि कोविड-19 के कारण दुनिया भर में घरेलू कर्मचारियों पर गहरा असर हुआ है। उनके रोजगार खत्म हो गए हैं और अन्य सेक्टरों की तुलना में कामकाजी घंटों में भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 7.5 करोड़ घरेलू कर्मचारी हैं, यानी विश्व में रोजगार प्राप्त हर 25 व्यक्तियों में एक व्यक्ति। इनमें 3/4 से अधिक महिलाएं हैं। यूएन एजेंसी ने चिंता जताई है कि कोविड-19 महामारी ने श्रम बाजार में घरेलू कर्मचारियों की मुश्किलों को उजागर कर दिया है। यूएन एजेंसी के प्रमुख गाय राइडर ने कहा,
What we've seen with the pandemic is that domestic workers have lost their jobs in greater numbers than others, or they've had their working time reduced more than others.
महानिदेशक गाय राइडर कह रहे थे कि हमने महामारी के दौरान यह देखा है कि अन्य की तुलना में घरेलू कर्मचारियों के कहीं ज्यादा संख्या में रोजगार खत्म हुए हैं या उनके कामकाजी घंटों में अधिक गिरावट आई है। हर 10 में से 8 घरेलू कर्मचारियों के पास अनौपचारिक रोजगार है और वे कानूनी व सामाजिक संरक्षा उपायों के दायरे से बाहर हैं। यूएन एजेंसी प्रमुख ने चिंता जताई कि पहले की तुलना में 16% ज्यादा कर्मचारी श्रम कानूनों के दायरे में हैं, मगर जिन देशों में संरक्षण उपाय उपलब्ध हैं, वहां उन्हें हमेशा प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता है।
विश्व भर में 1 अरब लोग यानी लगभग हर 7 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी रूप में विकलांग है। इनमें से अधिकांश लोग विकासशील देशों में रहते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्हें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है। विकलांग जन के अधिकारों पर संधि में शामिल सदस्य देशों के सम्मेलन का इस हफ्ते 14वां सत्र था, जिसमें फिनलैंड की एबिलिस फाउंडेशन के लिए नेपाल में कंट्री कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बीरेंद्र राज पोखरेल ने भी वर्चुअल रूप से शिरकत की। यूएन न्यूज हिंदी के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान किन खास मुद्दों पर चर्चा हुई।
14वां सेशन जो चल रहा है स्टेट पार्टी कॉन्फ्रेंस का, इसमें विशेषतः अभी जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है विश्व भर में, और इसमें जो अपांगता भएका लोग और विकलांग लोग जो है उसको बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है, वो समस्या झेल रहे हैं, और इसमें कैसे मानवीय सहायता प्रदान कर सकते हैं स्टेट पार्टी के रूप में। प्रत्येक देश अपने नागरिक जो विकलांग लोग है उसको कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, एक सवाल है। और दूसरा यहाँ कि मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए हमारे इंटरनेशनल कानून है, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बोलते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून है, इसमें कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी आता है, और इसको कैसे अपने देश में कार्यान्वयन करें और कैसे अपने राष्ट्रीय कानून को इस तरीके से इम्बेड करें, मुख्य राउंड टेबल डिस्कशन चल रहे हैं उसके साथ, यही है इसका मुख्य मकसद।
जी, कोविड-19 महामारी के समय में विकलांग जन है, उनके लिए खासी मुश्किलें पेश आ रही हैं, वो किस तरह की मुश्किलें हैं जो चिंता का कारण बनी है?
हमने देखा है डेवलपिंग कंट्री में भी और डेवलप कंट्री में भी विकलांग जन के समस्या हुआ है। पहले तो विकलांग जन को इसमें यथेष्ट मात्रा में जानकारी नहीं मिले कि जो डेफ पीपल होते हैं उनको सूचनाएं एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं मिले, फिर ब्लाइंड लोगों को भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं मिले, और जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हम बोलते हैं बौद्धिक अपांगता उसको भी नहीं मिले। इसलिए सबसे पहले तो वो महासंधि के आर्टिकल 21 के जरिए हमें हमारा राइट्स है कि सूचना हम एक्सेसिबल फॉर्मेट में मिले, वो नहीं मिले विकलांग जन को, पहले तो यहाँ समस्या मिला। दूसरा ये हुआ कि क्वारंटाइन भी तैयार हो गया और आइसोलेशन वार्ड भी तैयार हो गया, बट दे आर नॉट मेड एक्सेसिबल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, कैसे विकलांग जन उसमें अफेक्टेड हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने वो आइसोलेशन वार्ड भी अच्छा नहीं बनाया, एक्सेसिबल नहीं बनाया। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ लॉकडाउन के कारण, इसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज वो भी एक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास यथेष्ट मात्रा में डिवाइस भी नहीं है और उसके पास सफिशियंट एजुकेशनल मटेरियल भी ऑनलाइन सिस्टम में नहीं है। लॉकडाउन के बाद जो दैनिक रोजगारी करके अपने जन अपने गुजारा करते हैं विकलांग जन, उनका रोजगारी गुम गया, और टेम्पोररी रोजगारी गुमने से उनका वो खाद्य राइट्स टू फूड भी गुम गया। उसके लिए बहुत सारा मानवीय सहायता की आवश्यकता थी मगर ये सहायता उनके तरफ नहीं पहुंचा। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि वैक्सीन तैयार हुआ है, इन वैक्सीन तैयार होने से फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को मिला है, सिक्योरिटी पर्सन को मिला है, और बहुत ज्यादा रिस्क में हुए विकलांग जन के प्रायोरिटी में नहीं रखा गया है, इसलिए उन्होंने वैक्सीन भी नहीं मिला है।
ये थे एबिलिस फाउंडेशन के लिए नेपाल में कंट्री कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बीरेंद्र राज पोखरेल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बढ़ते ई कचरे की समस्या पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है। नई रिपोर्ट में इस स्वास्थ्य जोखिम से बच्चों की रक्षा के लिए ज्यादा असरदार उपायों और बाध्यकारी कदम उठाने का आग्रह किया गया है। पूरे ब्यौरे के साथ प्रतिष्ठा जैन।
इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी ई कचरा अनेक देशों में बेहद तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप के आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2019 में 5,36,00,000 टन कचरा पैदा हुआ। इसमें से महज 17% को ही उपयुक्त ढंग से रिसाइकल किया गया। अनौपचारिक कर्मचारी ऐसे कचरे को बीनते हैं, पुर्जों को तोड़कर अलग करते हैं और फेंकी गई वस्तुओं से मूल्यवान धातुओं व सामग्री को निकालते हैं। जहां जहरीले अवशेषों के संपर्क में आने से उनके व उनके अजन्मे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है। ताजा रिपोर्ट में ई कचरे की समस्या से निपटने के लिए व्यावहारिक उपायों को भी पेश किया गया है। इसके तहत निर्यातकों, आयातकों और सरकारों को ई कचरे का पर्यावरण अनुकूल ढंग से निस्तारण करने और कर्मचारियों व समुदायों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बात की गई है।
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।